एशिया के कंट्रीज में मलेशिया, इंडिया, फिलीपींस, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और चाइना देशों को प्रचार कर रहे हैं और जहां जहां माना जाते हैं अपनी सरलता से, अपने सुंदर प्रश्नों से सभी भक्तों को प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। आपने जो वक्त माया को परिणाम में गए होंगे निश्चित रूप से महाराज का मिश्रण मिलता है और महाराज माया को उठाओ में बहुत ही सरलता के साथ हर जगह पे महामूर्ति का चली है इस तरह रखा जाते हैं। महाराज बहुत सुंदर साधना करते हैं वैष्णव आसन और हमारा परम सौभाग्य है जो हमारे देश के हमारे उपस्थित हैं। आप सबसे निवेदन है कृपया करके अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर स्विच ऑफ मोड पर कर दीजिए और बहुत ही ध्यानपूर्वक महाराज की संख्या द्वारा हो जाएंगे। हरे कृष्ण। Okay, everybody, for Sri Chaitanya Charitamrita, Pandya Deva, chapter number 9, entitled Lord Chaitanya's Travels to the Holy Places. We'll be reading from verse 219 up to verse 300, which is on the board.
Kaham Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, Adhyay Sankhya 9, Abhyaya Sankhya 290 se pad rahe hain. Aur is adhyay ka shishak hai, चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्रा है।
गावल प्रभु के रचना काल आवल जानना गावल गावी खाली जो है अरना क्रम जाना। After saying this, Sri Rangapuri lifted Sri Chaitanya Mahaprabhu up and embraced him. As they embraced shoulder to shoulder, they both began to cry in ecstasy.
अनुवाद। ये कहकर श्रीरंगपुरी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को उठाया और उनका आलिंगन किया। आलिंगन करते समय दोनों भाववेश रुदन करने लगे।
सने के आपने सचती जुहारा तायरा आयवा ईश्वर पुरी ला संपन्ता गोसानी जनाईला। After some moments, they came to their senses and became patient. Sri Chaitanya Mahaprabhu then informed Sri Rangapuri about his relationship with Ishwarapuri.
कुछ क्षणों के बाद उन्हें होश आया तो वे शांत हुए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रंगपुरी से ईश्वरपुरी के साथ अपने संबंध के विषय में बताया।
अद्भुत प्रेमेरा मन्या दुहारा उठाविला दुन्हे मन्या करी दुन्हे आनंदे वसीला। They were both inundated by the wonderful ecstasy of love that was aroused in them. Finally, they sat down and respectfully began to converse.
वे दोनों अपने भीतर उठने वाले अद्भुत प्रेम भाव से अभिभावित हो उठे। अंत में दोनों बैठ गए और आदरपूर्वक बात करने लगे।
दुई जने कृष्ण कथा काही रात्रि दिने ए माते गनाइला पंच सादा दिने। In this way, they discussed topics about Lord Krishna continually for 5 to 7 days.
इस तरह वे दोनों लगातार 5-7 दिनों तक कृष्ण विषय कथाओं की चर्चा करते रहे।
के पूरी कमरे पूछी रे जन्म स्थाना गोसानी कौतुके अपना नवद्वीप नामा। Out of curiosity, Sri Rangapuri asked Sri Chaitanya Mahaprabhu about his birthplace, and the Lord informed him that it was Navadvip Dham.
Sri Rangapuri ne उत्सुकता वश चैतन्य महाप्रभु से उनके जन्म स्थान के विषय में पूछा तो महाप्रभु ने बताया कि नवद्वीप धाम उनका जन्म स्थान है।
श्री माधवपुरी रसंगी श्री रंगापुरी पूर्वे असिया छिला जेहो नदिया नगारी। श्री रंगापुरी had formerly gone to Navadvip with Sri Madhava and her puri, and he therefore remembered the incidents that had taken place there.
पहले श्री रंगपुरी श्री माधवेंद्रपुरी के साथ नवद्वीप जा चुके थे, अतः उन्हें वहां हुई घटनाएं याद आ गई।
जगन्नाथ मिश्र गए भिक्षा ये खरीला ओ पूर्वा पोचा also recalled accompanying Sri Madhavendra Puri to the house of Jagannath Mishra, where Sri Rangapuri had taken lunch. He even remembered the taste of an unprecedented curry made of banana flowers.
Nadir Kalam sunte hi Sri Rangapuri ko smaran ho aaya ki vah Madhavendra Puri ke saath Jagannath Mishra ke ghar gaye the, जहां उन्होंने दोपहर का भोजन किया था। यहां तक कि उन्हें केले के फूलों की बनी सब्जी का अद्वितीय स्वाद भी याद आ गया।
जगन्नाथ तेरा प्रमाणी देना महापति प्रदा बसाओ ये आयेना देना ये न जगत माता श्री रंगपुरी also remembered the wife of Jagannath Mishra. She was very devoted and chaste, and for her affection, she was exactly like the mother of the universe.
She then fully को जगन्नाथ मिश्र की पत्नी याद आई। वे अत्यंत समर्पित तथा पति व्रता थी। वात्सल्य में तो वह जगत माता तुल्य थी।
रंजाने की पूर्णता समान नहीं त्रिभुवने पुत्र समस्त नेह खारिना सन्यासी भोजने He also remembered how Sri Jagannath Mishra's wife, Sachi Mata, was expert in cooking. He recalled that she was very affectionate towards the sannyasis and fed them exactly like her own sons.
उन्हें ये भी स्मरण हुआया कि श्री जगन्नाथ मिश्र की पत्नी शचि माता भोजन बनाने में कैसे निपुण थी। उन्हें स्मरण हुआया कि वह सन्यासियों के प्रति अत्यधिक स्नेह रखती थी और उन्हें अपने पुत्रों के समान भोजन कराती थी।
धन्या एक योग्य पुत्र खरिया चेतन्यासा शंकरान्य नाम धन्या औपवाया वायासा श्री रंगपुरी also remembered that one of her deserving sons had accepted the renounced order of life at a young age. His name was Shankaranya.
श्री रंगपुरी ये भी जानते थे कि उनके एक योग्य पुत्र ने कम वय में संन्यास ले लिया था। उनका नाम शंकरान्य था।
So now we're going to read the verse on the board, number 30, 300, brother. एते शंकरान्य रसिद प्राप्ति हैला
एते शंकरान्य रसिद प्राप्ति हैला
प्रस्तावे श्री रंगपुरी
Thank you.
शंकर आरण्य ने
सिद्धि प्राप्त
सिद्धि प्राप्ति कर ली बातचीत के दौरान
श्री रंगपुरी दस
इस प्रकार बोले
Translation, Sri Rangapuri informed Sri Chaitanya Mahaprabhu that the sannyasi named Shankararanya had attained perfection in that holy place, Pandharapur.
Sri Rangapuri ne Sri Chaitanya Mahaprabhu bataya ki isi teerth Pandharapur mein Shankararanya namak sannyasi ne siddhi prapt ki.
Purport by Srila Prabhupada, Sri Chaitanya Mahaprabhu's elder brother was named Vishwarup. He left home before Sri Chaitanya Mahaprabhu and accepted the sannyas order under the name of Shankararanya Swami. He traveled all over the country and finally went to Pandharapur, where he passed away after attaining perfection. In other words, he entered the spiritual world after giving up his mortal body at Pandharapur. Sri Rangapuri, a disciple of Sri Madhavendrapuri, and godbrother of Ishwarapuri disclosed this important news to Sri Chaitanya Mahaprabhu.
तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई का नाम विश्वरूप था. उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के पूर्व ही घर छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया था और उनका नाम शंकर आरण्य स्वामी था. वे सारे देश में भ्रमण करके अंत में पांडरपुर गए जहां सिद्धि प्राप्त करने के बाद संसार से चल बसे. दूसरे शब्दों में उन्होंने अपना भौतिक शरीर पांडरपुर में त्यागा और वे दिव्य लोक सिधार गए. श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य श्रीरथपुरी ने जो ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे ये महत्वपूर्ण समाचार श्री चैतन्य महाप्रभु को बताया.
ॐ ज्ञानतिपरन्तस्य ज्ञानञ्जनाकरा चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोवृत्तं स्थापितं येन भूतले सर्वयोरुवागता मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो
करते करते वो पांडरपुर पहुंचे जहां पर वे ब्राह्मण घर में भोजन कर रहे थे.
और वहां उनको एक खबर मिली कि श्री रंगपुरी भी वहां पर उपस्थित है.
So Sri Rangpuri is a disciple of Sri Madhavendra Puri. Sri Madhavendra Puri is very, very wonderful, very exalted personality who brought the seed of love of God into the sampradaya.
और श्री रंगपुरी श्री माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे और श्री माधवेंद्र पुरी बहुत ही ऊंची कोटि के वैष्णव हैं जिन्होंने इस संप्रदाय में कृष्ण प्रेम का बीज
किया. और श्री चैतन्य महाप्रभु सीनियर वैष्णव सन्यासी इज देयर इन द सेम प्लेस दैट ही वाज वेरी ईगर टू गो टू मीट हिम.
तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि एक वरिष्ठ सन्यासी उसी स्थान पर उपस्थित है तो बहुत ही उत्सुकता पूर्वक उनको मिलना चाहते
थे.
तो वैष्णव शिष्टाचार ये है कि जो हमारे आध्यात्मिक गुरु के गुरु भाई होते हैं उनको उतना ही आदर देना चाहिए जितने हम अपने गुरु को देते हैं.
So Sri Chaitanya Mahaprabhu is a disciple of Ishwara Puri, and he knew that Sri Rangapuri is the god brother of Ishwara Puri. So he considers him also to be almost like his spiritual master, and he's eager to come and offer respects to him.
तो वो जानते थे श्री ईश्वर पुरे श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु श्री माधवेंद्र पुरे के शिष्य थे और श्री रामपुर उनके गुरु भाई थे तो वो उनको उतना ही आदर देना चाहते थे जितना वो श्री ईश्वर पुरे को देते.
I remember sometimes some of Prabhupada's god brothers would come and visit some places where I was. So I would always take advantage to go and see them and offer respects to them and have some association with them. It's very wonderful experience.
तो मुझे याद है कि श्रील प्रभुपाद जी के कई गुरु भाई आते थे जहाँ पर मैं रहता था तो मैं उनके संग का फायदा उठाता था, उनके पास जाता था, उनको आदर सम्मान देकर उनका संग लिया करता था.
So here Ishwara Puri, the brother of Sri Rangapuri, is describing first thing that he met with Chaitanya Mahaprabhu, they both felt ecstasy together. And this was an indication of their connection with Madhavendra Puri.
और इस प्रसंग में हम ये सुनते हैं कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री रंगपुरी इकट्ठे भाव वेश होके मिले थे और ये दिखाता है कि दोनों श्री माधवेंद्र पुरी से जुड़े हैं.
Just like when Sri Chaitanya Mahaprabhu came to Mathura, when he first came to Mathura and he was dancing in front of the deity, what's the deity, first deity he went to Mathura? Anyway, okay, the first temple in Mathura which he went to, he danced in ecstasy. And when he was chanting, he was on his own. Mahaprabhu was chanting and dancing in ecstasy. And another Brahmin suddenly appeared and began to dance with him.
तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा आए थे तो पहले मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु गए थे वो केशव जी का मंदिर था और वहां पर चैतन्य महाप्रभु भाव वेश नृत्य कर रहे थे और वहां पर एक ब्राह्मण भी आए जो कि उसी भाव वेश में नृत्य करने लगे.
So Chaitanya Mahaprabhu was in this temple, he was dancing, and this Brahmana suddenly appeared, began to dance with him, and experienced this as Mahaprabhu was dancing in ecstasy, the Brahmana also danced.
तो हम जैसे देखते हैं कि जब हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं तो लोग देखते ज्यादा और भाग कम लेते हैं, कोई सौभाग्यशाली जीव भी हरिनाम संकीर्तन में भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे तो ये ब्राह्मण भी उतने ही भाव वेश में आकर उसमें जुड़ने लगे.
तो आफ्टर द फिनिश कीर्तन चैतन्य महाप्रभु took the brahmana aside and inquired from him about his identity. Because it was such an unusual thing that someone would have so much taste for kirtan in the morning.
तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये देखा तो वो ब्राह्मण को कोने में ले जाकर उनके बारे में पूछने लगे, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ दृश्य था कि कोई कीर्तन में हरिनाम में इतनी रुचि रखकर इसमें नृत्य करे।
So when Mahaprabhu inquired from this Brahmana, the Brahmana said, yeah, I'm a disciple of Madhavendra Puri. One time Shri Madhavendra Puri came here in Mathura and I took him to my home and I fed him and I also surrendered to him and took initiation from him.
तो उन ब्राह्मण ने बताया कि माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे और उन्होंने बताया कि कैसे माधवेंद्र पुरी जब मथुरा में आए थे तो उन्होंने उनको अपने घर में आमंत्रित किया था, उनकी सेवा की थी और उनसे उनके शिष्य बन गए।
चैतन्य महाप्रभु heard this and चैतन्य महाप्रभु immediately offered obeisances to the brahmana. The brahmana felt very uncomfortable. He said, "Look, no. I said, I'm a grihastha. You're a sannyasi. I offer my respects to you. You shouldn't bow down to me." But Chaitanya Mahaprabhu said, "No, you are the god brother of my spiritual master."
So, जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना तो तुरंत उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तो ब्राह्मण घबरा गए और वो कहने लगे, नहीं, मैं गृहस्थ हूँ, आप सन्यासी हैं, मुझे प्रणाम मत करें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं, आप मेरे गुरु के गुरु भाई।
So because they had connection with, because the Brahmana had connection with Madhavendra Puri, because Sri Ranga Puri had also connection to Madhavendra Puri, who's a direct disciple also of Madhavendra Puri. So when they chanted the holy name and when they associated with devotees, they could experience.
तो जब क्योंकि चंद्र महाप्रभु माधवेंद्र पुरी से जुड़े थे और वो ब्राह्मण तो शिष्य ही थे माधवेंद्र पुरी के, तो जब वो मिले तो उन्होंने उस संकीर्तन और भक्तों के संकल्प खूब आनंद उठाया।
So Shri Ranga Puri was describing what he inquired from Chaitanya Mahaprabhu, you know, where are you from? What's your birthplace? And when he was told now the dream, then Ranga Puri remembered how he had gone there, how he had gone to Chaitanya Mahaprabhu's father's home and taken food there.
तो श्री रंग पुरी ने चंद्र महाप्रभु के बारे में पूछा कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, आप कौन से, आपका किस जगह से आप निवास करते हैं, और जब उनको पता चला कि वो नवद्वीप से हैं तो उनको स्मरण आया कि कैसे वो उनके घर जगन्नाथ मिश्र के घर गए थे और वहां पर उन्होंने प्रसाद लिया।
And he remembers also describes here the wonderful curry made there, how he tasted this wonderful curry with the banana flour. And how he remembered also Jagannath Mishra's home and the chaste wife of Jagannath Mishra, Sachi Mata, how she served the sannyasis.
और उनको स्मरण आया कैसे केले के फूल की सब्जी उन्होंने खाई थी जिसका स्वाद अद्वितीय था, और कैसे जगन्नाथ मिश्र थे और कैसे उनकी पतिव्रता पत्नी शची माता थी और कैसे वो प्रेम से और स्नेह पूर्वक अपने पुत्रों के समान सन्यासियों की सेवा करती थी।
So this is Vaishnava culture. You see, Jagannath Mishra and Sachi Mata, of course, they are very great souls and in their behavior will be very perfect, displayed perfect Vedic culture, serving the sannyasis, bringing sannyasis to their home and feeding them, honoring them, just like they would take care of their own son.
तो ये वैष्णव संस्कृति है कि कैसे हमें सन्यासी को घर में बुलाकर उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको आदर सम्मान देना चाहिए।
In Kali Yuga, sometimes nowadays you go to people, why have you come here? Why are you disturbing me? What do you want? But in the Vedic culture, it's very different.
अगर हम इस समय किसी के सन्यासी किसी के घर चले जाएं तो कहेंगे, आप क्यों यहाँ पर आए हैं, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति ऐसी नहीं थी।
So Sri Ranga Puri then describes how they had a son, Jagannath Mishra and Sachi Mata had a son, their elder son, who took sannyas when he was still a young man.
और श्री रंग पुरी ने स्मरण किया कि कैसे जगन्नाथ मिश्र सचि माता का एक पुत्र था जिन्होंने बहुत ही छोटी आयु में सन्यास ले लिया था। क्योंकि हिनाने वाली बात ये थी कि कम उम्र में हम सर कोई व्यक्ति संन्यास क्यों लेगा, क्योंकि उनके पास अच्छे माता पिता थे, घर में सभी सुविधाएं थी, उस संन्यास लेने का कोई कारण नहीं होता।
तो विश्व रूप regularly would go to the home of Sri Advaita Acharya and sit and listen to Advaita Acharya discuss on the Shastra.
उसके पीछे मुख्य कारण ये था कि जो विश्वरूप उनके बेटे थे वो अक्सर अद्वैत आचार्य के घर में जाते थे और उनसे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया करते थे.
And at a certain point, as Vishwaroop was growing up, he came to youth. His parents were thinking, we have to get our son married. But when Vishwaroop understood his parents were planning to have him arrange his marriage, then he left home, deciding he wanted to take sannyas.
और जैसे ही विश्वरूप बड़े हुए तो उन्होंने सुना उनके माता पिता उनकी विवाह के बारे में चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे संन्यास लेना चाहिए.
So often young men feel like that. They feel restless. They feel that, well, why to get married? Why to accept so many troubles in life? But also sannyas also can mean a lot of troubles. That it is not a very easy thing these days to take to be a sannyasi.
So, उन्होंने सोचा कि जो है मैं विवाहित जीवन में क्यों जाऊं, क्योंकि विवाहित जीवन में काफी कष्ट है, काफी परेशानियां हैं, तो सन्यास लेना ज्यादा उत्कृष्ट है. लेकिन सन्यासी बनना भी कोई आसान बात नहीं, उसमें भी काफी कठिनाई उठानी पड़ती है.
Generally it's not recommended for young men because young man, while he's young, he may feel, oh, I'm happy, I don't want to get married, I'm very fine, I like this life. But when you come to middle age, you may feel more troubled, you may feel more restless. And we have seen in ISKCON how many young men who have been sannyasis, they have difficulty and end up leaving the sannyas.
तो जब शरीर छोटा होता है तब तो जो है कोई उत्साह से संन्यास ले सकता है, लेकिन जैसी उम्र थोड़ी बढ़ती है तो कोई विचलित हो सकता है और उसमें परेशानियां आ सकती है. और हम इस्कॉन के इतिहास में भी देखते हैं कि कई लोगों ने कि बहुत कम उम्र में संन्यास ले लिया, लेकिन आगे जाके उनको कठिनाई सहनी पड़ी और उन्होंने अपने संन्यास आश्रम को भी छोड़ दिया.
The situation of sannyasis, and he interviewed many sannyasis. And you can read that book and see the information. So many young men who became sannyasis and who didn't make it, they gave up the sannyas order after some time.
ISKCON में एक सन्यासी हैं परम पूज्य यदुनंदन स्वामी महाराज. उन्होंने एक किताब का संस्करण किया है जिसमें उन्होंने अलग अलग लोगों का इंटरव्यू लिखा है उसमें कि उनका सन्यासी जीवन कैसा है, और उन्होंने उन लोगों का भी इंटरव्यू है जिन्होंने सन्यास आश्रम लिया लेकिन उसको निभा नहीं पाए. और जब ऐसे कुछ लोगों ने सन्यास आश्रम को छोड़ा तो निश्चित रूप से काफी उत्पाद भी पैदा हुआ समाज में, हमारी संस्था में और उनके निजी जीवन
में.
शिला प्रभुपाद बहुत चिंतित रहते थे और वो कहते थे कि ये जो नव युवक हैं जिन्होंने संन्यास आश्रम को स्वीकार किया है लेकिन उसको वो छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये दिखाई देता है, ये प्रतीत होता है कि उन्होंने सन्यासी धर्म को सही तरीके से नहीं समझा.
So, nowadays in ISKCON, they don't allow young men to take sannyas. You should be at least 40 years of age.
ISKCON में इसलिए एक नया कानून बना है कि कम उम्र में सन्यास नहीं दिया जाता, कम से कम एक व्यक्ति को 40 साल या उससे ऊंची या उनसे बड़ी उम्र में होना चाहिए.
That way you have time to mature, to get more experience, to become a better preacher, to become more established in Krishna consciousness. But perpetually to accept the renounced order of life is not recommended.
So इस तरीके से एक बड़ी उम्र में सुनियाद देने का ये फायदा है कि एक व्यक्ति जो है परिपक्व हो सकता है, उसको समय प्राप्त होता है अपने आप को स्थित करने का, प्रचार में दक्षता प्राप्त करने का, ताकि सन्यास आश्रम का सही तरीके से निभा सके.
So here you see Vishwaroop, the older brother of Lord Chaitanya, as a young man, he left home and he took sannyas. And of course, Satchimata and Jagannath Mishra, they were very worried that maybe our other son will do the same thing. And at one point, they even stopped Nimai Pandit, they even stopped the Lord Chaitanya from having education, because he thought if he gets too much education, he will also renounce the world.
तो हम यहाँ देखते हैं कि कैसे विश्वरूप ने बहुत ही कम उम्र में सन्यास ले लिया था और उनको डर था जगन्नाथ मिश्र शची माता को कि जो निमाई है वो भी सन्यास ले लेंगे. और यहाँ तक कि उन्होंने उनकी जो जो शिक्षा लेने से भी रोक दिया था ताकि जो है वो आगे जाके सन्यास लेने का ना सोचें.
So one day शची माता happened to see निमाई sitting in the garbage with all the clay pots. And his mother was shocked. What are you doing sitting in that contaminated place? But her son said to her, well, you don't allow me to get education, so how do I know what's contaminated and what's not contaminated?
So, one day, there's such a situation that the Nimai was in a dirty place, in a high place, where the roots were growing, and they were sitting there. शची माता ने देखा तो उन्होंने कहा निमाई तो वहां पर भी बैठ गए, तो ये स्थान ऊंची है, गंदा है. तो निमाई ने कहा कि आप मुझे शिक्षा तो दिला नहीं रहे हैं, तो मुझे पता कैसे चलेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या शुचि है क्या ऊंची है.
So here in these words from Nimai Pandit, and then also all the other neighbors were also complaining that you're not sending your son to school, you're not giving him an education, it's not good. So then Jagannath Mishra and Satchimata were relenting and they agreed that their son could go and continue education.
So Satchimata ne ye dekha aur jab baaki ke padosi aas paas ke bhi log kehne lage ki aap Nimai ko padhai karne ke liye shiksha prapt karne ke liye nahi bhej rahe hain, to unhone haar maan li aur Nimai ko wapas shikshit hone ke liye bhej diya.
So of course later on Lord Chaitanya Mahaprabhu, first of all, was married. First wife died. His mother persuades him to marry again, but still he takes sannyas.
और चित्रा महाप्रभु ने विवाह किया था कि पहली पत्नी के देहांत के बाद शची माता ने उनको प्रेरित किया कि दूसरा विवाह करें. दूसरे विवाह करने के बाद भी चित्रा महाप्रभु ने सन्यास लिया.
So Sri Chaitanya Mahaprabhu was after taking sannyas, he went out from Jagannath Puri saying, I want to search out my older brother. Because Mahaprabhu knew his older brother had left home and gone away taking sannyas. And he thought, I will go and find him. Of course, Chaitanya Mahaprabhu was omniscient, but this was his excuse. This was how he was explaining to the people of Jagannath Puri. Because they were saying, don't go, just stay here.
चेतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी से दक्षिण भारत की यात्रा में निकले और ये कहकर निकले कि अपने बड़े भाई को ढूंढना चाहते थे. हालांकि चेतन्य महाप्रभु सर्व यात्रा थे, वो जानते थे कि उनके बड़े भाई जो है वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो इस बहाना देकर जगन्नाथ पुरी से निकलना चाहते थे क्योंकि वहां पर वह सब चाहते थे कि चेतन महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में ही रहे.
सो नाउ श्री रंगपुरी has revealed to him that his brother did certainly took sannyas and he has also achieved perfection and departed from the world in that very place, Pandharpur.
और फिर इस स्थान पंडरपुर में आके चित्र महाप्रभु को एक ज्ञान हुआ श्री रंगपुरी के द्वारा कि उनके बड़े भाई ने सन्यास ले लिया था. तो इस स्थान पर आकर उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी, वो भगवत धाम चले गए थे और
Swarup, he is actually Vishnutattva. He is not different from Sri Chaitanya Mahaprabhu. He is Sankarsha, one of the Chaturvyuha.
और ये जो विश्व रूप थे चैतन्य महाप्रभु से भेद नहीं है, ये संकर्षण है, चतुर्व्यूह में संकर्षण.
And it is said that after he departed from the world, he entered into the body of Lord Nityananda.
और ऐसा कहा गया है कि जब विश्व रूप ने कांतर धारण हुआ तो नित्यानंद के शरीर में प्रवेश हो गए.
So the elder brother Sri Chaitanya Mahaprabhu is a very exalted, not an ordinary soul.
Vishnu Tattva comes to take part
in Lord Chaitanya's master. Just like Balaram comes before Krishna. So the elder brother of Chaitanya Mahaprabhu.
Chaitanya Mahaprabhu ke bade bhai ko sadhana vyakti nahi the. Usme Vishnu Tattva the. Jis tarike se bhagwan Shri Krishna se pehle Balaram ji aate hain, Chaitanya Mahaprabhu se pehle Vishnu ji aate hain.
Now, after the elder brother of Lord Chaitanya, after Vishwaroop left home, Mother Sanchi was very upset. You know, her son has run away from home, gone away to take sannyas. Mother felt very bad, and she thought, how could my son do this? And within her mind, she considered it must be due to that association, that he was always going to Advaita Acharya's home.
तो जैसे विष्णु मैं घर छोड़ के चले गए थे सन्यास लेने के लिए, तो माता शक्ति बहुत क्रोधित हो गई, बहुत दुखी हो गई, और वो सोचने लगी कि मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है. और तभी उनको लगा निश्चित रूप से अद्वैत आचार्य के सन के कारण, उन्हीं कारण मेरे बेटे ने सन्यास किया.
So it happened that one occasion Sri Chaitanya Mahaprabhu was giving mercy to all the devotees and he was telling them they will all get love of God. But he said everyone will get except Mother Sanchi. And when all the devotees heard this, they thought, what? Your own mother? You're not going to give her love of God? You're giving to everyone else? You're not going to give your own mother? Chaitanya Mahaprabhu said, I cannot give my mother because she is an antaraj. She is an offender of the devotees.
तो एक ऐसी लीला में जहाँ चैतन्य महाप्रभु सबको कृष्ण प्रेम दे रहे थे, लेकिन उन्होंने एक भक्त को नहीं दिया, अपनी ही माता शची माता. जब बाकी भक्तों को पता चला कि ऐसे कैसे हो सकता है कि शची माता को कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, तो महाप्रभु ने कहा इसलिए क्योंकि वो एक अपराधी है, उन्होंने वैष्णव के प्रति अपराध किया.
अपराध इज वेरी सीरियस थिंग. समवन मे बी अ विशाई, ही मे बी अ सेंस ग्राइ, सेंस एंजॉय, बट इट्स नॉट एज बैड एज बीइंग अ Just like Ajavila, he was a Vishai. You know, he was a drunkard, he would steal, he gave up his wife and took a prostitute for a wife, and he was having children even in his old age. They were still having children. So he was a Vishai, but somehow he got perfection because he never did any offense. When he was calling his son, Narayan, it was Namabhas, it was not Namapara.
So, Vishay Muna Rada Acha Pradhi Munesi, Jesse Ajamil, who Vishay Vikita, Chuli Kartata, the Gayati Kartata, Sharap Kitata, Vesaman Kartata. Lekin, you use the Betaka Narayan, so Jesse Jesse Narayan Kutata. वो नाव भाष के स्तर के होने के कारण उसके सारे पाप क्षीण हो गए.
But Daksha, he was an aparadhi. He committed offenses against Lord Shiva. So bad.
लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि दक्ष जो है वो एक अपराधी है, क्योंकि उन्होंने शिव जी के प्रति अपराध किया.
He received so bad money because of his offense against Garuda. He also suffered greatly.
Shaukari Muni, वो हम देखते हैं कि उन्होंने भी वैष्णव अपराध किया था गरुड़ जी के प्रति, और उसके कारण उनको भी काफी पीड़ा झेलनी पड़ी.
So it says Vaishnava apparatus it's a mad elephant offense. It destroys all the tripura devotion. You have to be very careful.
पागल हाथी के समान, जैसे पागल हाथी बगीचे में सभी पौधों को नष्ट कर देता, वैसे ही वैष्णव अपराध मात्र की जो भक्ति का पौधा है उसको नष्ट कर सकता है।
So all the devotees were puzzled that why how's Mother Sati and Aparati, what how could Mother Sati, she never does any invention, she's such a nice devotee. We are hearing Radha Puri describe how she would serve the sannyasis just like her own son. But Sri Chaitanya Mahaprabhu, the detective within Mother Sachi, that was some thinking, some bad feeling towards Advaita Acharya, that he was responsible for influencing her son, Vishwarupa. And because of his association, Vishwarupa had gone.
तो सब भक्तों सोचते थे, कह रहे ऐसे कैसा हो सकता है, शची माता अपराध कैसे कर सकती है। तो सब भक्तों से प्रेम में विवाह करती है, और खासकर तो जैसे रंगपुरी को स्मरण में आके कैसे उस सन्यासियों को अपने पुत्रों के समान खिलाती थी, उनका ध्यान रखती थी। तो सब भक्त बहुत विस्मित थे, लेकिन चतुर महाप्रभु जानते थे कि शची माता के अंदर कुछ दुर्भावना है अद्वैत आचार्य के प्रति, क्योंकि उनको लगता था उन्हीं कारण से पेड़ ने विष्णु में संन्यास लिया। इस दुर्भावना के कारण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम में लीन हो जाते।
So when the devotees heard about this, and they thought, "Well, we are bringing Advaita Acharya, let her come to speak, let her get forgiven for her offenses."
सब भक्तों ने सोचा, अगर ऐसी बात है तो हम तुरंत अद्वैत आचार्य को यहाँ पर बुलाते हैं और शची माता के चरणों को छू कर अपने अपराधों का क्षमा मांग सकते।
So he got a great acharya and he said, "Come on, you have to come. Mother Sachi has to beg you to get forgiveness for her offenses." A great acharya said, "Who? Me? No, Mother Sachi, she's the divine mother. She's the mother of the Lord. How she could ever commit any offense against me? I cannot give any blessings to Mother Sachi."
कृपा करके आइए कि माता शची जो है वो आपसे क्षमा मांगेंगे और जिससे उनको अपराध मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अद्वैत आचार्य ने भी उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, शची माता जो है वो श्री चंद्र महाप्रभु की माता है, भगवान की माता है, वो मेरे प्रति अपराध कैसे कर सकती, मैं उनको आशीर्वाद कतई नहीं दे सकता।
And he fell down. When he fell down, Mother Sachi ran forward and took the dust from his feet.
So ऐसा कुछ होने लगा कि हम लोग जो है अद्वैत आचार्य को खींच कर ले जाने लगे, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य सब सुनकर सब भक्तों को देख कर जो है वो भाव में बेहोश हो गए, और जब वो बेहोश होकर गिरे तो तभी शची माता भागी और उनके चरणों को स्पर्श करके क्षमा उनको प्राप्त हो गई।
So this shows us how careful we have to be to avoid offenses.
तो इस घटना से इस लीला से हमें ये बात चलती है कि हमें कितना सतर्क रहना चाहिए वैष्णव के प्रति अपराध करने।
This way Lord Chaitanya was teaching all the devotees the importance of not blaspheming or committing any offense against another Vaishnava.
चैतन्य महाप्रभु लीला के द्वारा सभी भक्तों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे उनको भक्तों के प्रति इतना सतर्क रहना चाहिए कि उसके प्रति वो कोई निंदा या दुर्भावना नहीं रखे।
ओके, एनी क्वेश्चंस?
तो दूसरे कोई प्रश्न है?
यस ब्रू।
Yes. Like if you are having a family meeting. Maharaj is saying that this, like, if you have to serve prasadam,
yeah.
and sometimes certain items are limited, so you have to restrict devotees.
Yeah.
But devotees may insist that time you need to be strict. So then how to deal with such situation?
तो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि कुछ सेवाओं में हमें भक्तों के साथ शक्ति जो है वो बढ़ती पड़ती है तो क्या वो वैष्णव अपराध तो नहीं होगा तो महाराज ने पहले कहा नहीं शक्ति बढ़ती है लेकिन अपने साथ दूसरों के साथ नहीं तो उन्होंने पूछा कि जैसे हम प्रसाद सेवा करते हैं और जब हम कुछ प्रसाद की कुछ ऐसे आइटम होती हैं जो कि सीमित होती हैं ज़्यादा नहीं दे सकते लेकिन भक्त लोग जो हैं वो जितना बताया जाए उससे ज़्यादा मांगते हैं तो उनके साथ शक्ति से बोलना पड़ता है उनको रोकना पड़ता है तो ऐसे स्थिति में हम कैसे व्यवहार किया जाए कि हमें अपराध ना लगे
Well, we have to learn the art of speaking the truth and making it pleasing. Satyam Bruyat Priyam Bruyat, right? This is the saying in Sanskrit. That we should, we have to explain everything in a way, and at the same time, you have to do it politely, lovingly, caringly.
So, Maharaj keh rahe hain, hame wo kala seekhni hai ki hum satya bhi bol sakein. लेकिन इस तरीके से बोलें कि किसी को चुभे ना हर किसी को प्रिय लगे तो ये कला हम सबको सीखनी कि हम सत्य बोले लेकिन इतने प्रेम से और स्नेहशील तरीके से बोलें कि हर किसी को अच्छा लगे
We don't have to try to give instruction to others but unless we are their authority we don't have the right to be trying to instruct them
तो जब तक हमारे ऐसी प्रबंधक सेवा ना हो तो हमें दूसरों को जो है वो ऐसे उपदेश या ऐसे जो है वो सलाह नहीं देनी
चाहिए
अगर किसी की अथॉरिटी नहीं है उसके बावजूद भी उसको कुछ उपदेश दें तो हो सकता है वो हम नाराज हो जाएं और क्रोध हो जाएं कि आप कौन है कि आप मुझे कुछ आदेश दे सकते हैं
So we have to rely on the presence of senior authorities to keep everything in line, to keep the situation under control. If there's some difficulties, then some senior Vaishnava should be there to give the final judgment about the situation.
तो इसलिए हमें वरिष्ठ भक्तों की आवश्यकता पड़ती है ताकि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो उसमें उनका उनकी उपस्थिति से जो है वो परेशानी उसका समाधान परेशानी का समाधान निकल सके
But yes, you're right in that working with devotees, there has to be some control, some regulation. So you're saying you have to be strict. It doesn't mean you have to be harsh.
तो आप सही कह रहे हैं कि हमें उसको सेवाओं में जो है वो कुछ सीमा रखनी पड़ती है कुछ शासन का पालन करना पड़ता है जिसके हमें शक्ति हमें बढ़नी पड़ती है लेकिन शक्ति बढ़ने का मतलब जो है वो कठोर होना नहीं हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी जीवा का इस्तेमाल कैसे करते हैं और किस तरीके से हम उनसे बातचीत करते हैं बोलते हैं सत्य बोलते हैं
Of course, I could understand sometimes situations are difficult. You have many young men here, and they have a lot of passion, and sometimes they may be very eager to get some Jewish Mahaprasadam, and there's not enough for everyone. So,
तो ऐसा निश्चित रूप से हो सकता है कि यहाँ पर कई भक्त हैं जिनका शरीर अभी जवान है जिनको जिनकी जठराग्नि तेज है और जब वो जो है वो मधुर प्रसाद को देखते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा नहीं लेकिन कभी उतना नहीं बन पाता है तो कभी ऐसा पूरा अनुशासन करना पड़ता है लेकिन हम सबको एक चीज से जरूर सीखनी है वो क्या है सहनशीलता
Living together and taking meals together is very nice, but it can also be very challenging
तो साथ में रहना, साथ में प्रसाद लेना बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत चुनौतीपूर्वक भी हो सकता है.
So it's a learning experience. We're all learning, we're becoming purified, we're getting more and more experience of these situations, and it helps us to understand how much we're controlled by our senses and how much more we need to purify ourselves.
और सब हम जब इस तरीके से रहते हैं तब आस्ते आस्ते अपने आप को शुद्ध करते हैं और हम अनुभवी भी बनते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसे हम अपने इंद्रियों के द्वारा कितने नियंत्रित हैं और हमारा जीवन उनके प्रति कितना नियंत्रित है.
So we have to be humble, we have to take the straw between our teeth, we have to just ask other devotees for their cooperation and try to appeal to them.
तो हमें विनम्र बनना है और घास के तिनके को अपने दांतों में दबाकर जो है सब भक्तों से सहयोग की प्रार्थना करनी है. कृपा करें, हमारी मदद करें, हम उनकी सेवा कर सकते. तो हमें कोशिश करनी है कि सुंदर एक वैष्णव माहौल पैदा कर सकें लेकिन प्रसाद के समय निश्चित रूप से ये कठिन हो सकता है.
I remember one time in my center, it was in New York, a long ago. There was one devotee who was really harsh. And he would open the door to the prasad and say, "All right, you dogs." More than 30 of the devotees, well, they saw them, the devotees were just like dogs all coming fighting over the prasad. So you don't want to be like that.
तो मुझे याद है कि न्यूयॉर्क में एक भक्त थे तो उनका व्यवहार थोड़ा कठोर था और जब भी वो प्रसादम का दरवाजा खोलते थे प्रसादम हॉल का तो कहते थे तो इस तरीके से बोलते थे भक्तों को कि तो मतलब उनका व्यवहार ठीक नहीं था.
Okay, so the challenge you have to be taught is to go.
Thank you, Maharaj. My question is what is considered to be offensive towards Vaishnavas?
What does it mean to be a Vaishnava?
What activity, what thought process? And we also hear that in Kali Yuga, offenses are not.
He says that Maharaj, in Kali Yuga we also hear that mental offenses are not counted. So then how do we understand for our practical application?
Okay, so the first question about the
sir Prabhuji ka prashn ye tha ki hum kaise samjhe ki vaishnava apradh hai kya, ki kab hame vaishnava apradh lagta hai. Aur dusra hum Kali Yuga mein sunte hain ki khaaskar mansik apradh jo hai wo Kali Yuga mein nahi lagta hai. लेकिन हम इस लीला में देखते हैं कि सच्ची माता ने मानसिक रूप में उनका उसके प्रति अपराध किया था तब भी उनको अपराध लगा. तो हम अपने व्यवहारिक भक्ति में जीवन के लिए इस सिद्धांत को कैसे
समझते हैं? That maybe before becoming a devotee they did some, they had some bad behavior, bad habits. So if you criticize them on that basis, then this is offensive.
So कई वैष्णव प्रादों में से एक वैष्णव प्राद है कि जब हम किसी भक्त की निंदा करते हैं उनके जाति को देखकर कि जो है नीची जाति से हैं, जो है अच्छे कुल से नहीं हैं, या फिर हम उनकी वैष्णव की निंदा करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने भक्ति में आने से पहले जो पाप किए थे उसके उसको देखकर हम उनकी निंदा करते हैं तो ये वैष्णव अपराध है.
And the second question about in Kali Yuga, we think that we don't get any reaction, but the danger is you think bad about someone, there will become an act, there will be some action due to it, it will influence your behavior. And so, although there's no reaction for thinking about it, thinking is the beginning of action. After we think about it, then you start to behave in that way. You do some activity against someone, and that brings reaction.
So, हालांकि हाँ कलयुग में मानसिक रूप से तो अपराध नहीं लगता है, लेकिन अगर मन से किसी के प्रति बुरा सोचते हैं तो बड़ी जल्दी वो कार्यशील हो जाएगा और हमारे किसी न किसी कार्य में वो दिखाई देगा, तो इसलिए हमें जो है उसको तुरंत छोड़ना
चाहिए. In a particular way towards them, according to what you were thinking. You're thinking something bad about someone, then you start to actually deal badly with them because you were thinking bad about them. So we have to be very careful not to keep these kind of thoughts in the mind, because they will become manifest in action, and that will bring reaction.
So, अगर हमारे मन में कुछ ऐसा दुर्विचार होगा तो वो किसी न किसी रूप से जो है वो हमारे कार्यों में भी दिखाई देगा, और जब कार्यों में दिखाई देगा तो निश्चित रूप से उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा. तो हमें बहुत सतर्क रहना है कि हम ऐसे विचारों को अपने मन में ना रखें और इससे निवारण प्राप्त करें. Stop them, so they feel offended and they may shoot back also. How to deal with such a situation?
Well, we have to recognize the needs of all the different types of devotees.
Yeah, certainly older people may need some special arrangement. Just like we have chairs in the temple, you know, we can't expect all everybody to be able to sit on the floor. So older people, we arrange some chairs, some people have leg problems and so on, we have chairs for them. And similarly, taking prasada, not everybody is able to sit down on the floor and take prasada. So we have sometimes we arrange tables. So yeah, this is the problem of management. Managers have to be able to accommodate all these different kinds of people. They have to make arrangements for everyone. They have to understand the needs
तो प्रभु जी का प्रश्न ये था कि हम देखते हैं कि जैसे हमारे मंदिर में जितने प्रबंधक कार्य है वो उन भक्तों के द्वारा दिया जा रहा है जो कि उम्र में छोटे हैं, और जब भक्त जो कि 15-20 साल जो है वो भक्ति में पहले से जुड़े हुए हैं तो उनके कुछ विशेष जरूरतें वो प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो प्रबंधन के द्वारा की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता है, और अगर वो भक्त उनको कुछ बोलते हैं तो नाराज हो जाते हैं या फिर जो है कुछ लड़े होने का डर होता है, तो ऐसी स्थिति को कैसे कैसे कैसे, कैसे डील किया जाए. तुम आज बता रहे हैं कि हाँ अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं कि जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो पुराने भक्त हैं, जो कि कुछ वृद्ध भक्त हैं, उनकी क्या विशेष जरूरतें हैं. जैसे मंदिर में हम कुर्सियाँ रखते हैं क्योंकि हर कोई नीचे नहीं बैठ सकता है, जो वरिष्ठ भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है। तो प्रबंधन का उद्देश्य यही है कि हर भक्तों की जो मूल जरूरतें हैं उसकी पूर्ति की जाए, यही उसका अर्थ है।
Devotee care, that's also you could say this is devotee care. We have to take care of all the devotees, not just the young devotees. There are so many different classes of devotees, and we have to be thinking about how to help them and how to encourage them.
ये वैष्णव सेवा है कि ना सिर्फ जो नए भक्त हैं उनकी भी सेवा करना है, जो वृद्ध भक्त हैं उनकी भी सेवा करना है। वैष्णव सेवा का ही भाग
मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉट इजी एंड इट्स अ डिफिकल्ट जॉब।
प्रबंधन करना भी आसान बात नहीं है, बड़ा मुझे कठिन काम है।
We always looking for new managers. We always get so tired of all the complaints. It's so difficult to keep people happy.
तो प्रबंधन कार्य जो है वो आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि हर भक्त को खुश करना आसान बात नहीं है, इसलिए पुराने भक्त बड़ी जल्दी प्रबंधन कार्य को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको इतने सारे जो है कंप्लेंट्स।
कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर हैज टू बी कम्युनिकेशन, देयर हैज टू बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू वॉइस देयर नीड्स एंड देयर कंसर्न्स टू द मैनेजमेंट।
और कम्युनिकेशन जरूरी है, ऐसी व्यवस्था जरूरी है जहाँ किसी को कोई परेशानी है तो स्पष्ट तरीके से हमें विचार को रख सकते।
एंड द मैनेजमेंट हैज टू कम्युनिकेट बैक टू द डिवोटीज ऑफ द कांग्रीगेशन, दे हैव टू एक्सप्लेन देयर लिमिटेशंस एंड देयर प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइंग टू मीट ऑल देयर डिमांड्स।
और जो प्रबंधन है उनको भी जो है अपना अपनी परेशानी का साफ साफ स्पष्ट तरीके से उनको रखना चाहिए, भक्तों को बताना चाहिए किस कारणवश इस व्यवस्था को वो नहीं कर सकते।
The older devotees are feeling something is needed to be done. The younger devotees who are managing are not doing it. Then they should explain why they're not doing it. There must be some reason why. And they should appeal to the older people to help them or to understand the problem.
तो अगर वृद्ध भक्तों की कुछ ऐसी आवश्यकता है जो कि प्रबंधन पूरा नहीं कर पा रहा है तो प्रबंधन को उनको समझाना चाहिए कि किस कारणवश वो चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे। तो एक प्रेम स्नेह पूर्वक तरीके से जो है उनको उनके सामने बात रखनी चाहिए क्योंकि वो व्यवस्था पूरा नहीं कर पा रहे।
कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट,
स्पष्ट शब्दों में चीज बातचीत करना है बहुत जरूरी है।
ओके, हरे कृष्णा।
तो एक छोटी सी सूचना है कि महाराज चाहते थे कि सब भक्तों को जो है प्रसाद के अंदर प्रसाद जो है वितरित करें, क्योंकि प्रसाद के काफी संदर्भ में काफी प्रश्न उठते हैं। तो आप सब लोग यहाँ पर आके महाराज से जो है वो स्वीट बॉल इसकॉल फेवरेट प्रसाद हम आके स्वीकार कर सकते हैं। अरे वो लेकिन सब भक्तों से प्रार्थना है, सब भक्तों से प्रार्थना है कि कतार में आए और एक भक्त के लिए एक ही बॉल है। हरि बोल, जो दूसरा भक्त अनुरोध